सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार फ्रेंड्स। मुख्य विषय के तहत आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे और वह है विधायिका से सदस्यों के निलंबन को लेकर। लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को, खबरों को देख लेते हैं। मुझसे कई बार कुछ अलग तरीके के प्रश्न किए जाते हैं, हालांकि मैं उनके जवाब सीधे सीधे डेली ऑडियो लेक्चर के माध्यम से नहीं देता हूं, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, जवाब दिए ही जाने चाहिए, क्योंकि जब बार बार अलग अलग स्टूडेंट इस तरह के प्रश्न खड़े कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनके मन में कुछ संदेह है, तो संदेहों को दूर किया जाना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट मुझे ये भी पूछते हैं कि सर, अगर हम रेडियो न्यूज सुन लेते हैं या दूरदर्शन की खबर देख लेते हैं तो क्या तब भी अखबार पढ़ना जरूरी है? जैसे कुछ लोग यही कहते हैं कि सर, जैसे आप जो क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर देते हैं, आपका डेली ऑडियो लेक्चर सुन लेते हैं, तो क्या अखबार पढ़ना जरूरी है? इस तरह की बातें पूछते हैं। आपको ध्यान होगा कि याद करने की कोशिश कीजिए कि जब भी मैं कोई तथ्य आपके सामने रखता हूं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं माध्यम भी रख दूं कि ये खबर कहां थी, है ना। कभी रेडियो न्यूज की बात करता हूं, कभी दूरदर्शन की बात करता हूं, कभी अखबारों की बात करता हूं, और ये मैं इसलिए करता हूं ताकि आपके दिमाग में ये भ्रम न रह जाए कि अगर आप एक मीडियम को लेकर के चल रहे हैं तो बात बन जाएगी। किसी जमाने में था, हम लोगों के समय में था कि अगर आप रेडियो न्यूज सुन लेते हैं तो आप ये मान करके चलिए कि 75% आपका काम पूरा हो गया, 25% जो होता था वो आप अखबारों से कर सकते थे, नहीं तो आप जो मैगजीन आती थी उससे कर सकते थे। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। आज मैं जितनी बातों की आपसे चर्चा करने जा रहा हूं उसमें से इक्के दुक्के ही होंगे जो आपको रेडियो न्यूज और दूरदर्शन न्यूज के माध्यम से जानने को मिले होंगे, ये सब अखबारों में ही आए हैं। आप प्रश्न कर सकते हैं कि फिर उनमें क्यों नहीं आए, अगर महत्वपूर्ण है तो उनमें लिए जाने चाहिए? नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप देखिए कि पूरे देश में इतनी घटनाएं घट रही हैं, जो ऑफिशियल मीडिया है, रेडियो और दूरदर्शन दोनों ऑफिशियल मीडिया है, तो वो अपने ढंग से समाचारों का चयन करते हैं और वे जो समाचार दे रहे हैं उनका उद्देश्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को समाचार देना नहीं है, राष्ट्र को समाचार देना होता है। आप इस अंतर को अच्छे से समझ लीजिए। अखबारों का भी ये उद्देश्य नहीं होता, केवल आपके जो कॉम्पिटेटिव मैगजीन्स आती हैं उनका उद्देश्य होता है कि इस परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के हिसाब से इसमें खबरें दी जाएं, राइट। तो आइए अब कुछ ऐसी खबरों को देखते हैं। दोस्तों, कुछ दिनों पहले एक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था, समुद्र में विस्फोट हुआ था टोंगा में। ये जगह है टोंगा और ये जो समुद्र है ये है दक्षिण प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, उसमें ये विस्फोट हुआ था। बहुत ही भयानक विस्फोट था, बहुत ही भयानक, और इतना भयानक विस्फोट हुआ कि मतलब आप कह लीजिए कि वो लगभग आसपास का एरिया कहा जाता है कि तहस नहस हो गया है, क्योंकि उससे संपर्क टूट गया है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी बात इसके बारे में आपको जान लेनी चाहिए, क्योंकि आप अगर आप मेंस के पेपर उठा करके देखें, फर्स्ट पेपर, तो उसमें ज्वालामुखी के बारे में काफ़ी प्रोमिनेंटली क्वेश्चन पूछा गया, और हर साल लगभग ज्वालामुखी या भूकंप के बारे में तो पूछ ही लिया जाता है। यह बेसिकली समुद्री भूकंप था, या आप कह लीजिए, या कह लीजिए कि समुद्रीय ज्वालामुखी था। ज्वालामुखी अब पृथ्वी पर भी फटते हैं, लेकिन यह समुद्र में फटने वाला ज्वालामुखी था। मैंने अभी कहा प्रशांत महासागर, आप जानते हैं नाम, आपने सुना होगा रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर पूरी तरह से एक वृत्त बना हुआ है, एक वलय बना हुआ है, और ज्यादातर जो ज्वालामुखी हैं दुनिया के, जो 90% कह लीजिए भूकंप हैं, भूकंप और ज्वालामुखी का परस्पर काफी संबंध भी होता है, भूगोल में आपने पढ़ा होगा, तो 90% जो भूकंप है वो रिंग ऑफ फायर में ही आते हैं। और ये जो अभी ज्वालामुखी फटा है ये लगभग उसी क्षेत्र में है। थोड़ी सी कल्पना कीजिए, अब अपनी कल्पना शक्ति को थोड़ी सी बढ़ाइए, हमें कल्पना के साथ ही तार्किक शक्ति भी बढ़ती है। समुद्र के अंदर है और एक ज्वालामुखी फटा है, इसका मतलब है कि वहां गर्मी बहुत ज्यादा रही होगी, इतनी गर्मी हो गई कि अब उसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया पानी के लिए, तो वहां से फटा, विस्फोट हुआ, आवाज आई। तो जैसे ही वो आवाज पानी तक पहुंची, या वो गर्मी पानी तक पहुंची, धक्का पानी तक पहुंचा, जब अंदर से वाष्प या कोई पदार्थ निकलेगा ज्वालामुखी का तो पानी को धक्का देगा ना, तो क्या होगा, कल्पना कीजिए। सीधी सी बात है कि जो पानी की लहरें हैं वो तेजी से पीछे की तरफ हटेंगी, दूसरी तरफ हटेंगी, और जब आप किसी को भी तेजी से धक्का देंगे तो उछल जाएगा ना, तो पानी उछलने लगेगा। इसे ही हम कहते हैं सुनामी, और ऐसा हुआ भी। दोस्तों, दुनिया में ये माना जाता है कि अभी भी लगभग 1350 ज्वालामुखी मौजूद है, लगभग ये माना जाता है। और जितनी भी ज्वालामुखी की घटनाएं होती हैं उसकी 3/4 पानी में होती हैं। तो मेरी समझ से अभी जो मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया है उससे आपको बातें समझ में आ गई होंगी। इसकी थोड़ी सी गतिविधियां, या कह लीजिए कि इसका थोड़ा सा प्रभाव हमारा जो चेन्नई है, वहां जो समुद्र तट है, वहां दिखाई पड़ा है। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा प्रभाव वहां तक आया है। दोस्तों, आज मैं आपको बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं, नए प्रयोगों से बदल जाएगा वर्तमान और भविष्य। इसे आप पढ़िएगा, साइंस से रिलेटेड, या आप यूं कह लीजिए कि यह आर्टिकल है। इसमें से एक जो प्रयोग है, या कह लीजिए इन्वेंशन है, वह है GPT-3। इसे आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मुझे इसमें जितने भी नाम लिए गए हैं उसमें यह महत्वपूर्ण लगा। बेसिकली GPT-3 है जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर 3। ये जो मशीन लर्निंग होती है और जो कृत्रिम मेधा, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप कहते हैं, का एक प्रकार है, और इसमें मनुष्य की तरह खास चीजें सीखने की कोशिश की जाती हैं। GPT-3 कभी कभी प्री एग्जामिनेशन में इस तरह के शब्दावलियों का रिलेशन पूछ लिया जाता है कि यह क्या है। दोस्तों, न्यायालय के 2 निर्णय अभी आए हैं। एक निर्णय को मैं मुख्य विषय के तहत लूंगा, लेकिन जो दूसरा निर्णय है उसकी चर्चा मैं यहां करूंगा, जो खासकर महिलाओं कि सशक्तिकरण से संबंधित है। राजस्थान हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि आपको मालूम होगा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए यह व्यवस्था की गई है कि यदि कोई व्यक्ति सर्विस में रहते ही यही मृत्यु को प्राप्त होता है, उसका निधन हो जाता है, तो उनके बच्चों को बकायदे अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। अनुकंपा नियुक्ति है ना, क्योंकि उनके पिता का निधन हो गया है, सरकारी नौकरी में थे, तो हम आपको नौकरी दे रहे हैं। अभी तक की जो स्थिति थी, यह नौकरी बेटों को दी जाती थी, या फिर अविवाहित बेटी है तब दी जाती थी। यह इसी से जुड़ा हुआ मामला है। जब एक विवाहित बेटी ने दावा किया कि मेरे पिता का निधन हो गया है और उसकी जगह पर मुझे अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, तो जो ऑर्गेनाइजेशन था, सरकारी ही था ऑर्गेनाइजेशन था, उसने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, वो तो बेटों को दी जाती है, अब बेटी को भी दी जा सकती है, लेकिन विवाहित पुत्री को नहीं दी जा सकती, क्योंकि जो विवाहित पुत्री है अब उसका जो अधिकार है वो अपने पति के घर पर है, वहां से है। फिर यह मामला हाई कोर्ट में पहुंचा और हाई कोर्ट ने अब यह निर्णय दिया है कि नहीं, विवाहित पुत्री को भी अपने पिता कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए अधिकार है। और उसने कुछ बहुत अच्छे तरीके से कोट किए हैं कि ये जो ख्यालात हैं ये बिल्कुल पुराने पड़ चुके हैं, बिल्कुल वो अपने पिता के अधिकारों की वारिस होती है, जैसे अधिकार उसके अविवाहित होने पर रहते हैं, यानी अपने पिता के ऊपर, वैसे ही विवाहित होने के बाद भी रहते हैं, क्योंकि किसी के विवाहित या अविवाहित होने से उनके माता पिता के साथ रिश्ते नहीं बदल जाते। और फिर उन्होंने कहा कि उनकी जिम्मेदारियां भी कम नहीं हो जाती। अब तो बकायदे यह भी कानून आ चुका है कि अगर किसी माता पिता के बेटे नहीं हैं या बेटे उसकी देखरेख नहीं कर रहे हैं, तो बकायदे ये बेटी की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने अभिभावकों के, अपने माता पिता की देखरेख करे। तो जब बेटी के ऊपर उनकी देखरेख करने की जिम्मेदारी डाली गई है, तो अनुकंपा नियुक्ति की वह अधिकारी क्यों नहीं हो सकती है? देखिए, हाई कोर्ट का एक डिसीजन है, इसे आप बकायदे महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत ले सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी साल ऐसा नहीं होता जब महिला सशक्तिकरण पर मेंस में कोई ना कोई क्वेश्चन ना आए, और यहां तक कि निबंध भी पूछ लिया जाता है, और इस बार तो निबंध आया ही है। तो इस तरह की जो लेटेस्ट बातें होती हैं वो हमेशा आपको अपने आंसर राइटिंग में शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, अब मैं आता हूं मुख्य विषय पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा। मेरे पास जो वक्त है थोड़ा सा उसमें मैं इसकी चर्चा कर दे रहा हूं। विधायिका जब मैं कह रहा हूं तो विधायिका में दोनों हैं, संसद भी है और विधानसभाएं भी हैं, राइट। संसद और विधानसभा के आप जानते हैं जितने भी सदन हो तो उसके एक अध्यक्ष होते हैं और वही कार्य का संचालन करते हैं, है ना। सांसद और विधायक बैठते हैं और किसी भी विषय पर डिबेट कर रहे होते हैं। अब किसी भी कारण से, खासकर ज्यादातर मामले ऐसे ही होते हैं कि संचालन ठीक से नहीं करने दे रहे हैं, जब विपक्ष के सदस्य हो हंगामा करेंगे तो संचालन करना मुश्किल होता है, सदन का चल पाना, तो उन्हें या तो बाहर जाने को कह दिया जाता है, नहीं जाएंगे तो संसद या कह लीजिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है, और कभी कभी ये भी कदम उठाया जाता है कि जो सदस्य हैं उनको निलंबित कर दिया जाता है। अब जो निलंबित करने का मामला है, आप कितने दिनों के लिए निलंबित कर रहे हैं, एक दिन के लिए, तीन दिन के लिए, या अभी जो सत्र है निर्धारित किया गया है उस पूरे सत्र के लिए, कि या कि और ज्यादा। खासकर महाराष्ट्र में यह घटना हुई कि वहां जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे उनका निलंबन एक साल के लिए कर दिया गया, एक साल के लिए, और बस उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां की हैं। अभी फैसला नहीं दिया है लेकिन उसने जो टिप्पणियां की हैं उसके आधार पर क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट देगी यह बहुत साफ तौर पर समझा जा सकता है। दोस्तों, इसे लेकर के मैं आज आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, आप इसे देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। मोस्ट प्रोबेबली इसका मैं हिंदी वर्जन भी आपको प्रोवाइड करूंगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आपको दूंगा। इस पर मैं आपसे कल विस्तार के साथ यदि संभव हो सका तो चर्चा करूंगा। एक बात मैं आपको आज और बताना चाहूंगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया का ही मैं एक आर्टिकल आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं, जो जर्मनी के एम्बेसडर है हमारे भारत में, उनका ये इंटरव्यू है। आपको ध्यान होगा कि कल मैंने जर्मनी के एक जहाजी बेड़े के आने की बात कही थी जिसका नाम था बेयर्न। देखिए, कल तक इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही थी और मैंने केवल शब्द का उल्लेख किया था। अब जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार में यहाँ हमारे जो हमारे एम्बेसडर हैं, हमारे एम्बेसडर नहीं मतलब जर्मनी के हमारे यहाँ जो एम्बेसडर हैं उनका चूंकि इंटरव्यू छपा है तो डेफिनेटली ये टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब टॉपिक के तहत केवल जंगी जहाजी बेड़ा ही इंपॉर्टेंट नहीं हो गया है बल्कि भारत और जर्मनी के रिश्ते भी इंपॉर्टेंट हो गए हैं, और आपके सिलेबस में दिया हुआ है भारत के महत्वपूर्ण देशों के साथ संबंध। तो इसका भी जो हिंदी वर्जन होगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से एक मित्र का नाम है दीपा तिवारी वैशाली बिहार से, आपका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।